नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। 10 राज्यों में 37 राज्यसभा सीटों के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन। नेपाल में नई संसद के गठन के लिए मतदान जारी। अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान का समर्थन किया। रायसीना संवाद आज नई दिल्ली में शुरू होगा और ICC T20 विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता आपसी सहयोग को विभिन्न क्षेत्रों में और सुदृढ़ करने पर चर्चा करेंगे, साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार साझा करेंगे। वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
फिनलैंड के राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद डॉक्टर अलेक्जेंडर स्टब की भारत की यह पहली यात्रा है। श्री स्टब आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात करेंगे। उपराष्ट्रपति CP कृष्णन और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी श्री स्टब से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति स्टब नई दिल्ली में आज शाम आयोजित होने वाले 11वें रायसीना संवाद 2026 में मुख्य अतिथि और प्रमुख वक्ता होंगे। भारत और फिनलैंड के बीच सौहार्दपूर्ण, मैत्रीपूर्ण और बहुआयामी संबंध हैं, जो साझा लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। फिनलैंड यूरोपीय संघ और नॉर्डिक क्षेत्र में भारत का एक महत्वपूर्ण भागीदार है। पिछले महीने AI इम्पैक्ट समिट के लिए फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेट्री ओर्पो भी भारत की यात्रा पर आए थे। राष्ट्रपति स्टब की यह यात्रा विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने तथा परस्पर संबंधों को बढ़ाने की दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। फिनलैंड के राष्ट्रपति मुंबई का भी दौरा करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
भारत के प्रमुख भू राजनीति और भू अर्थशास्त्रीय सम्मेलन रायसीना संवाद का 11वां संस्करण आज से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। 3 दिवसीय सम्मेलन में वैश्विक नेता, नीति निर्माता, विशेषज्ञ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों और रणनीतिक सहयोग पर विचार विमर्श करेंगे। वर्ष 2026 का विषय है संस्कार, अभिकथन, सामंजस्य, उन्नति, जो वर्तमान वैश्विक परिदृश्य को दर्शाता है। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय के सहयोग से ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है।
वर्ष 2016 में स्थापित वार्षिक संवाद अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर चर्चा के लिए भारत का अग्रणी मंच बनकर उभरा है। वर्षों से इस संवाद में बदलते भू राजनीतिक समीकरणों, जलवायु संबंधी चिंताओं, तकनीकी परिवर्तन, आर्थिक लचीलापन और वैश्विक शासन व्यवस्था के भविष्य जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा होती रही है। सम्मेलन में कई विदेशी गणमान्य व्यक्तियों के भाग लेने की उम्मीद है। भूटान के विदेश मंत्री ल्योपो दीनानाथ धुंगील कल भारत पहुंच चुके हैं। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब, जो राजकीय यात्रा पर हैं, रायसीना संवाद में मुख्य अतिथि और प्रमुख वक्ता के रूप में शामिल होंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रतिनिधित्व उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडो करेंगे, जो संवाद में अमरीकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। अन्य प्रमुख प्रतिभागियों में सेशल्स के विदेश मामलों और प्रवासी मामलों के मंत्री बैरी फॉरे, मॉरिशस के विदेश मामलों, क्षेत्रीय एकीकरण और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री धनंजय रामफुल और श्रीलंका के विदेश मामलों, विदेश रोजगार और पर्यटन मंत्री विजीथा हेरत शामिल है।
10 राज्यों में 37 राज्यसभा सीटों के लिए नामांकन दाखिल करने की आज अंतिम तिथि है। नामांकन पत्रों की जांच कल की जाएगी। उम्मीदवार 9 मार्च तक नाम वापस ले सकते हैं। इन सीटों के लिए मतदान 16 मार्च को होगा और परिणाम उसी दिन घोषित कर दिए जाएंगे। निर्वाचन आयोग पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज कोलकाता में प्रवर्तन एजेंसियों के नोडल अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक करेगा। आयोग ने होली से पहले 2 मार्च को जिला निर्वाचन अधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और केंद्रीय बलों के नोडल अधिकारियों के साथ बैठक की थी। वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश भारती के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग का एक दल 8 मार्च को कोलकाता पहुंचेगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज कर्नाटक के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वे बेलगावी जिले के श्री वीर भद्रेश्वर मंदिर में राजगोपुरम कलशारोहण और महाकुंभ अभिषेक समारोह के उद्घाटन में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। नेपाल में संसदीय चुनावों के लिए मतदान जारी है। ये चुनाव पिछले वर्ष सितंबर में युवा नेतृत्व वाले प्रदर्शनों के बाद पहला आम चुनाव है। उन प्रदर्शनों में 77 लोगों की मौत हुई थी और सरकार को इस्तीफा भी देना पड़ा था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
नेपाल में प्रतिनिधि सभा के सदस्य चुनाव के लिए देश भर में मतदान प्रक्रिया आज सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है। देश भर के सभी 77 जिलों में एक ही चरण में मतदान हो रहा है, जो सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। कुल 65 राजनीतिक दल चुनाव लड़ रहे हैं। फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली में 3017 पुरुष उम्मीदवार हैं और 388 महिला उम्मीदवार हैं और एक अन्य है, जिससे चुनावी दौड़ में कुल 3406 उम्मीदवार हैं। इसी तरह आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत 3135 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें 1363 पुरुष और 1772 महिलाएं शामिल हैं। श्वेता सिंह, आकाशवाणी समाचार, काठमांडू।
और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। पश्चिम एशिया में संघर्ष और तेज हो गया है। इसराइली रक्षा बलों ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल बेड़े से जुड़े कई ठिकानों को नष्ट करने का दावा किया है। इससे पहले इसराइल ने पूर्वी तेहरान में ईरान के बड़े सैन्य परिसर पर हमला किया था। इस परिसर में IRGC, खुफिया निदेशालय, बासिज कुद्स फोर्स, आंतरिक सुरक्षा बल, साइबर युद्ध बल और विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए जिम्मेदार आंतरिक सुरक्षा इकाई का मुख्यालय भी शामिल है। इस बीच अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका और इसराइल मजबूत स्थिति में हैं और वो आगे भी कार्रवाई जारी रखेंगे। उधर अमरीकी केंद्रीय कमान के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी पर जानकारी देते हुए कहा कि 100 घंटे से भी कम समय में लगभग 2000 लक्ष्यों पर हमले किए गए हैं।
इजरायली वायुसेना ने बेरूत में हिजबुल्ला के ठिकानों पर फिर से हमले शुरू करने की जानकारी भी दी। उधर अमरीकी केंद्रीय कमान के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी पर जानकारी देते हुए कहा कि 100 घंटे से भी कम समय में लगभग 2000 लक्ष्यों पर हमले किए गए हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि अमरीका और इसराइल द्वारा किए गए हमलों के बाद से लगभग 100,000 लोगों ने ईरान छोड़ दिया है। उधर अमरीका स्थित मानवाधिकार कार्यकर्ता समाचार एजेंसी के अनुसार अब तक ईरान में 1097 नागरिकों की मौत की सूचना है। ब्रिटेन और फ्रांस ने भी साइप्रस हमले के बाद युद्धपोत और वायु रक्षा संसाधन तैनात किए हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रोसी ने कहा कि ईरान द्वारा परमाणु बम बनाए जाने के प्रमाण नहीं मिले हैं, लेकिन ईरान के पास हथियार बनाने योग्य समृद्ध यूरेनियम का बड़ा भंडार और निरीक्षकों को पूरी पहुंच देने से इंकार करना गंभीर चिंता का विषय है। इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ युद्ध में अमरीका और इसराइल मजबूत स्थिति में है। उन्होंने कहा कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल भंडार को तेजी से नष्ट किया जा रहा है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान का समर्थन किया है। कल रात सीनेटरों ने कांग्रेस की अनुमति के बिना सैन्य अभियान को रोकने के उद्देश्य से लाए गए द्वितलीय प्रस्ताव को रोकने के लिए मतदान किया। सीनेट ने 47 के मुकाबले 53 मतों से प्रस्ताव को आगे न बढ़ाने का फैसला किया, जो मुख्य रूप से पार्टी लाइन के अनुरूप था। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में मौजूदा हालात के बीच अधिक मांग को देखते हुए टोरंटो, फ्रैंकफर्ट और पेरिस चार्ल्स डी गॉल के लिए अतिरिक्त क्षमता वाली उड़ानें संचालित करने की घोषणा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में एयर इंडिया ने बताया कि आज से 11 मार्च तक दिल्ली और टोरंटो के बीच 3 अतिरिक्त उड़ानें संचालित होंगी। 7 मार्च से 10 मार्च तक दिल्ली और फ्रैंकफर्ट के बीच 3 उड़ानें तथा दिल्ली और पेरिस के बीच 1 उड़ान अतिरिक्त चलेगी। पश्चिमी एशिया में जारी अस्थिरता के बीच एयर इंडिया ने यात्रियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। एयर इंडिया ने कहा है कि प्रभावित यात्री बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अपनी यात्रा की तारीख बदल सकते हैं या टिकट रद्द करने की स्थिति में पूरा रिफंड प्राप्त कर सकते हैं। ये सुविधा इस वर्ष 28 फरवरी या उससे पहले की गई सभी कन्फर्म बुकिंग्स पर लागू होगी। ब्राजील की सीनेट ने मरकसुर ब्लॉक और यूरोपीय संघ के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी दे दी है। ये समझौता दुनिया के सबसे बड़े मुक्त व्यापार क्षेत्रों में से एक है। इस समझौते में दक्षिण अमरीकी व्यापार समूह मरकसुर ब्लॉक के 4 संस्थापक सदस्य ब्राजील, अर्जेंटीना, पेराग्वे और उरुग्वे शामिल हैं। अर्जेंटीना और उरुग्वे पहले ही समझौते को मंजूरी दे चुके हैं। पेराग्वे की संसद को अभी इसे मंजूरी देना बाकी है। यूरोपीय आयोग ने पिछले सप्ताह घोषणा की थी कि वो यूरोपीय संघ की सर्वोच्च अदालत द्वारा इसकी वैधता पर फैसला आने तक इस समझौते को अस्थायी रूप से लागू करेगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कल रात नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बैठक में श्री रेड्डी ने राज्य की बढ़ती प्रशासनिक और सुरक्षा आवश्यकताओं को देखते हुए तेलंगाना में अतिरिक्त भारतीय पुलिस सेवा IPS अधिकारियों की तैनाती का अनुरोध किया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने इंडिया AI इम्पैक्ट समिट में हुए विरोध प्रदर्शन मामले में भारतीय युवा कांग्रेस के 3 कार्यकर्ताओं को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अदालत ने उनकी जमानत याचिकाओं पर नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई 6 मार्च तय की है। महाराष्ट्र में चल रहा गन्ने की पेराई का सत्र अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। गन्ने की आपूर्ति समाप्त होने के कारण 210 में से 77 चीनी कारखानों ने परिचालन बंद कर दिया है। राज्य चीनी आयुक्त कार्यालय की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार अब तक कुल 10 करोड़ टन गन्ने की पेराई की जा चुकी है। इससे 9.41% की रिकवरी दर पर 94 लाख मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन हुआ है। पिछले वर्ष की तुलना में गन्ने की पेराई में 1.48 करोड़ टन की वृद्धि हुई है, जबकि चीनी उत्पादन में 13 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि दर्ज की गई है। उड़ीसा की पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर में आज विशेष अनुष्ठान बनकलागी के कारण श्रद्धालुओं के लिए दर्शन 4 घंटे तक बंद रहेंगे। श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन ने एक सार्वजनिक सूचना में बताया कि मंदिर में दर्शन शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक बंद रहेंगे। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात और उत्तरी कोंकण क्षेत्र के कुछ हिस्सों में गर्म तथा उमस भरे मौसम का अनुमान व्यक्त किया है। कल तक इन क्षेत्रों में ऐसा ही मौसम बना रहेगा। विभाग ने कहा है कि उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान इस सप्ताह सामान्य से 4 से 6 डिग्री सेल्सियस अधिक रहने की संभावना है। विभाग के अनुसार मध्य भारत में अगले 2 से 3 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। खेलों में आईसीसी T20 विश्व कप का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला आज भारत और इंग्लैंड के बीच होगा। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7 बजे से ये मैच खेला जाएगा। पहले सेमीफाइनल मुकाबले में कल रात न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हरा दिया। फिन एलन के नाबाद शतक की बदौलत न्यूजीलैंड ने 170 रन के लक्ष्य को 12 ओवर 5 गेंद में 1 विकेट खोकर हासिल कर लिया। फिन एलन को मैन ऑफ द मैच चुना गया। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 के दूसरे दिन भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी, चिराग शेट्टी, रोहन कूपर, ऋत्विका गड्डे और आयुष शेट्टी तीनों पहले दौर में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। वहीं पुरुष डबल्स में चौथी वरीयता प्राप्त रंकी रेड्डी और शेट्टी को मलेशिया के कांग खाई शिंग और आरोन ताई के खिलाफ 21-23, 12-21 से हार का सामना करना पड़ा। मिश्रित युगल में रोहन कूपर और ऋत्विका गड्डे की जोड़ी पांचवीं वरीयता प्राप्त फ्रांस की जोड़ी थॉम गिक्विल और डेल्फिन डेलरू से हार गई। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
धन्यवाद फरहत। होली के अवसर पर कल सभी समाचार पत्रों में अवकाश होने की वजह से आज अखबार प्रकाशित नहीं हुए हैं। आइए आज समाचार पत्रों की वेबसाइट पर दी गई सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं। दैनिक भास्कर ने इसराइल ईरान जंग का वीडियो साझा करते हुए लिखा है, भारत से लौट रहे ईरानी युद्धपोत पर अमरीका का हमला, श्रीलंका के पास डूबा, 80 से अधिक सैनिकों की मौत, 32 का रेस्क्यू किया गया। दैनिक जागरण के शब्द हैं, ट्रंप की बड़ी जीत, अमरीकी सीनेट ने ईरान युद्ध रोकने का प्रस्ताव किया खारिज, जारी रहेगी सैन्य कार्रवाई। नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए दाखिल कर सकते हैं नामांकन, जनसत्ता की खबर है। हरिभूमि लिखता है, बिहार की सियासत में बड़ा उलटफेर, नीतीश कुमार की राज्यसभा जाने की अटकलें तेज। अमर उजाला सहित कई समाचार वेबसाइटों ने देशभर सहित राजधानी में होली मनाए जाने का समाचार दिया है। अमर उजाला लिखता है, सतरंगी रंगों में रंगी दिल्ली, अबीर गुलाल की बौछार के बीच छाई मस्ती, हर तरफ उमंग और उल्लास। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, राजस्थान में विदेशी मेहमानों ने उड़ाया रंग गुलाल। दैनिक ट्रिब्यून ने खेल जगत का समाचार दिया है, होली पर ईडन गार्डन्स में एलन की आतिशबाजी, दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में पहुंची न्यूजीलैंड। उत्तर भारत के 4 राज्यों के लिए बारिश की चेतावनी, 20 जिलों में तापमान 35 के पार, नव भारत टाइम्स की सुर्खी है। भारत में 4 करोड़ से ज्यादा बच्चे मोटापे का शिकार, दुनिया में दूसरे स्थान पर पहुंचा देश, अमरीका को छोड़ा पीछे, पंजाब केसरी ने आंकड़ों सहित खबर दी है।
धन्यवाद देवेंद्र। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब आज नई दिल्ली में पक्षीय वार्ता करेंगे। 10 राज्यों में 37 राज्यसभा सीटों के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन। नेपाल में नई संसद के गठन के लिए मतदान जारी। अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान का समर्थन किया। रायसीना संवाद आज नई दिल्ली में शुरू होगा। और आईसीसी T20 विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।